इसलिए जो कुछ भी इसने कर्म किया हुआ है, खाए 50 गुरु धारण किए हुए हैं, वो इस आवागमन के चक्कर से इस जो भूमंडल का जो ग्रेविटी है इससे बाहर नहीं जा सकता। मेरे बख्शीश सिंह सुन रहे हो, आप लोग मेरे सत्संग में आते हैं, मैं अपनी कॉन्शियंस को साफ रख के आपको सत्संग कराता, बगैर किसी जाति मान जाति गर्व जाति मतलब के लिए, क्योंकि मैं संत सदगुरु हूं, सच्चा ज्ञान दिया जाता हूं, मेरे जिम्मे ड्यूटी है, तेरा रूप है अद्भुत अदरज तेरी उत्तम देही, जब कल्याण जगत में आया परम दयाल सुने। तो जो आदमी तुम बूढ़ी बूढ़ी मेरे पास आते कपूर सिंह आके खोल, सारी उम्र तुम सत्संगी बने रहे, अगर तुम्हारा आखिरी समय तक तुम्हारा प्रेम फकीर चंद की देह के साथ, बाबा सावन सिंह की देह के साथ, या किसी मंदिर के साथ, आदमी असूल की दावत के साथ, मकान के साथ है, तुमने लाख जिंदगी में तप किया हुआ है, गुरु की सेवा की हुई है, गुरु के थूक खाए हुए हुए हैं, पांव चाटे हुए हैं, मत उम्मीद करो कि तुम इस ग्रेविटी ऑफ भूलोक के मंदिर से तुम बाहर जा सकते हो। समय तो लाल सिंह, अमर सिंह, मास्टर मोहन लाल, जो आदमी मुंशी राम, जो आदमी मेरे से प्रेम करते हैं, उनसे मैं अपनी ड्यूटी नारायण दास वाला जितने अपना फर्ज पूरा कर देना चाहता हूं। गुरु की दया है क्या? तुम समझो गुरु ने फूंक मारी है, नादानो तुम भूल में हो। जब दया गुरु की हुई निश्चय की शक्ति मिल गई, निवलता जाती रही और बल की शक्ति मिल गई, आ गए सत्संग में और संग सत्का हो गया, दुर्मति जाती रही और समती की शक्ति मिल गई। क्या काम? तो आज मैंने सत्संग दिया था आपको, मेरे दिल में ख्वाहिश था कबीर पंथू के साधु के मरने के ख्याल से, हम लोग साधु हो जाते हैं, तुम हमारे फगवे कपड़े को देखते हो, हमारी दाढ़ी को देखते हो, हमारी बातों को देखते हो, तुम बेवकूफ बन के लुटे जा रहे हो, तुमको मिलता कुछ नहीं, मगर तुम लोगों को पागल बने हुए फिरते हो। अब वो बेचारा 11,000 था 10 साल में, उसने 10-11,000 उस वक्त था, 10 साल में 10,000 रुपया और कमाया, उसने खाया भी हुआ कहां से लिया, बस बातें करना मेरी इतना जानता था, भगवे कपड़े पहने हुए थे जो आता, तो आज मैं उसकी क्रिया करना चाहता। नरसिंह दास की आत्मा अगर तू यहां कहीं है, मेरा सत्संग सुन, अपनी आग घन प्रकाश और शब्द में जा, बस मुझे क्या पता वो सुनता है कि नहीं सुनता। लोग कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर निकलता है, स्थान साबित करती है, होगा, तो इसलिए मैं उसकी आज क्रियाकर्म करता हूं और उसके फोटो ली हुई है। मैं चाहता हूं ये फोटो इस मेरे सत्संग के साथ मानव मंदिर में छपे, क्योंकि उसने अपने रिश्तेदारों का कोई पता नहीं दिया। अस्पताल वाले ने पूछा तेरे गुरु का बाप का क्या नाम है, वो कहता गुरु। अगर कोई रिश्तेदार है तो वो अपना सबूत दे करके पंजाब नेशनल बैंक से 19,000 रुपया वो ले सकता है, उनकी कॉपी हमारे पास पड़ी है, बैंक वाले तो लेते नहीं, हम साल पर रखेंगे नहीं, फिर पा जाएंगे, इस वास्ते ये सत्संग दे रहा। बाकी जो कुछ सदगुरु की महिमा है, जो सदगुरु करता है, जो सदगुरु की ड्यूटी है, कैसे वो जीवों को पार करता है, मैंने वो बता दिया। मगर चूंकि हर एक आदमी इस ख्याल से जीव के पास गुरु के पास नहीं जाता, इस ख्याल के लिए गुरु के पास भवदागर, उसके लिए और तरीका है, उसके लिए एक तो भवसागर से पार होना, एक भवसागर में तरना। कबीर ने कहा गुरु लगा में भव के ती, यानी वो भवसागर से पार कर। तो मैंने बता दिया कोई शख्स लाख तुम दान करो, पुण्य करो, जो मर्जी चाहे करो, नाम जपो, शब्द सुनो, अगर मरते समय तुम्हारा प्रेम गुरु की देह के साथ है, उसके डेरे के साथ है, तुम लाख हर लखू खा रपड़ा गुरु के दरबार में दिया हुआ है, क्योंकि तुम्हारा प्रेम उसके देह के साथ है, तुम्हारे मन में वजनी होगा, और वजनी होने के कारण ग्रेविटी ऑफ अर्थ तुमको पार नहीं दिए जाएगी। साइंस का असूल है, कौन रोक सकता है इसको? लाख तुम वेद पढ़ो, लाख तुम गीता पढ़ो, मैं हैरान होता हूं बाजे वगैरह। गीता अर्जुन ने 18 अध्याय कृष्ण के मुंह से सुने, भागवत कहती है वो नरक में गया। गुरु अर्जुन देव ने लिखा प्रभ सिमरन से पतवंते, प्रभ सिमरन से धनवंते, प्रभ सिमरन से दुश्मन करे। उनके भाई ने उनके साथ वो दुश्मनी की जिसका अंजाम सब दुनिया देखती है। मैं जाऊं तो किधर जाऊं, मैं हूं रिसर्चर, मेरे वहम का कोई जवाब नहीं देता। तुम लाख गीता पढ़ो, लाख ग्रंथ साहब पढ़ो, लाख सुखनी साहब पढ़ो, मुझे तो मगर जब तक तुम्हारा अमल ठीक नहीं है तुम इस भवसागर से पार नहीं जा सकते। आसान तरकीब बता दी मैंने साइंस के, कि मरने से पहले अपने मन के अंतर से सुंदर पुरुषोत्तम दास किसी भी असूल पदार्थ से, बाप बेटा भाई गुरु की देह या मंदिर या मस्जिद या मक्का या अगर तुम रखोगे तो संजीव कर ये साबित हो गया कि तुम्हारा मन भरा होगा श्री, वो ग्रेविटी अर्थ तुमको खींचेगी, तुम पार नहीं जा सकते। तो मैंने आज अपनी ड्यूटी संत सदगुरु वक्त होने की पूरी कर दी संसार के लिए। पढ़ो कबीर का पहला शब्द क्या है, मुझसे कोई ना आया मैं तो चाय पी लूं।
उठते कोई ना आया जासे पूछो जाए, इतते सब कोई जाते हैं भार लदाए लदाए, उठते सतगुरे आया जाकी मत बुद्धि धीर, भव सागर के जीव को खेल गावे ती।
कैसे गुरु लगाता है मुझको नहीं पता, कबीर साहब को पता होगा कि वो अपने चेलों को कैसे पार कराता है, मुझे नहीं पता। दाता दास कैसे अपने चेलों को पार कराते होंगे मुझे नहीं पता, मुझे तो उन्होंने सच्चे सतगुरु को मिलने के लिए आप लोगों की सेवा दी थी और कहा था तुझको सच्चा सतगुरु सत्संगियों के रूप में मिलेगा, तेरा बेड़ा पार करेगा, तू सच्चा आदमी है, शायद आरों की भी तार चले जाए। अब मैं कहता हूं कि जो आदमी परमार्थ के ख्याल से मेरे पास आते हैं अगर वो मेरी बात को समझ जाएं, उस पर अमल करें, वो कभी भवसागर में नहीं आएंगे, बच जाएंगे। बेशक तुमने कोई साधन नहीं किया ना सही, अरे गुरु मिला तब कहा कमाना हो, जिसको गुरु मिल जाता है पूरा सतगुरु पेटिया पूरी पाई मत हसंदिया खलंदिया रुचे पाई मुक्त झूठ है, पूरा सतगुरु में पूरी समझ पूरा ज्ञान में दे चला आप लोगों को, आप लोगों को नहीं तमाम मानव जाति को दे चला। अब मैं जाऊंगा अमेरिका, वहां यही कुछ कहूंगा क्योंकि मेरे जिम्मे ड्यूटी है। मैं जाऊंगा अगर जिंदा रहा तो। आगे पर दो चार कड़ियां पढ़ दो, मैं चाय पी लू।
अब हम चले हमारे पूरे तारे टूरे टाटे, आवन हो ए सो आइए सो ले ओ पर बाट।
वो भी एक ही बात है, तारे टूरे टाटे जितने तलकात थे सारे सारे तोड़ दिए, जितने तलकात थे सारे तोड़ दिए तारे चूरे टार के। यही मैंने बात एक ही है, मैंने साइंस के असूल से आसान बता दिया, लंबी झगड़े की बात नहीं रखी। आगे
तो ले ऊपर घर करे विष का करे आहार, ताको काले कहा करे पहरे
होशियार। एक ही बात है, जब आदमी आप कभी बैठो तो सारी अटैचमेंट अपनी ग्रास मैटर से छोड़ दो। कहां जाओगे? अकेले रह जाओगे। सूर्य पे खड़ा किया ना किया, तुम्हारी अटैचमेंट किसी के? सूर्य पे चढ़ा हुआ आदमी होता है उसकी अटैचमेंट नहीं होती, रह सकता रहता है। एक उन्होंने मजहब के तौर पर कहा, मैंने साइंस के तौर पर कह दिया, बिल्कुल आसान है जिसकी मर्जी चाहे। अच्छा अब रह गया दूसरी बात, आप दुनियादार हैं, इस भवसागर में तरने का क्या इलाज है? ये कहना चाहते, ये भवसागर में हमारा ख्याल काम करता है, विचार आशा, ख्याल में बड़ी ताकत है। जिस आशा को लेकर, अच्छी आशा को लो, अच्छी आस में अपना जीवन गुजारो, उस अच्छी आस यह है अपना भला चाहो, अपने परिवार का भला चाहो, अपने मुल्क का भला चाहो, अपने ग्वालियों का भला चाहो, किसी के बरखिलाफ दुश्मनी अदावत द्वेष नफरत मत रखो। क्योंकि तुम्हारे ख्याल में ताकत है तो जैसा तुम्हारा ख्याल है वैसा तुम्हारा हाल होगा। तो मैंने सबसे एक चीज पाई है आसान से की, कि अपनी जाती गरज के लिए किसी को धोखा फ्रेड 420 हेरा फेरी मत करो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि हमको जो सजा मिलती है या जजा मिलती है वो हमारे अपने ही ख्याल की है, होती है। तो जिस शख्स अपनी जाति गर्व के लिए किसी को तंग नहीं करता वो पाप भी कोई नहीं करता। दुनिया के व्यवहार में ये सब कुछ करना पड़ता, मैजिस्ट्रेट बैठा हुआ होता है, मुकदमा उसके पास आता है, किसी को फांसी दे देता है, किसी को कह देता है, उसी को पाप है। सवाल सिर्फ अपनी जाति, यही वजह है कि मैं अपनी जाति जिंदगी के लिए कोई भी हेरा फेरी नहीं करता। जो कुछ है तुम्हारा ख्याल, सबसे पहली बात यह है तुम्हारी वासना है। जिस वासना को लेके, जिस नियत को लेके तुम काम करोगे उसका फल तुमको मिलेगा। अब मेरे पास कितने आदमी आते हैं, सब अपनी औलाद से दुखी है। वो कहता है मेरा मुंडा आया था, मेरा लड़के नहीं काम करते, मेरे ये नहीं कर। मैं उनसे पूछता हूं, तुमने किस नियत से औलाद के पास गए थे? क्या औलाद पैदा करने के लिए गए थे? तुम तो गए थे स्वाद के लिए, अपने विजय विकार के लिए। ये तुम्हारे मुंडे नलायक हो गए, रोंदे कानू हो, जो कुछ तुमने किया हुआ उसको भूख दो। सोचे मैंने क्या कहा, जैसे तुम हो उसके संस्कार तुम्हारी औलाद में जाएंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, अपने अपने अंदरों में दागर होकर देखो। तो इस दुनिया में सबसे पहले जीवन को सुख बनाने के लिए क्या है, औलाद को औलाद की नीयत से पैदा करो, बस। जो आदमी जिस नीयत से जो काम करता है उसको वो मिलती है। हम लोग नीयत से औलाद पैदा करते हैं, बता बोले, तो फिर अगर औलाद नलायक होती है तो जिम्मेवार कौन? कोई। एक तो दुनिया में सुखी आने का पहला इलाज यह है, दूसरा यह है कि अपने बच्चों को प्यों लगाओ, अच्छी संगत दो, मगर संगत भी उसकी रहनी चाहिए जो बामिल हो, दूसरा ये ड्यूटी है। तीसरी ये है, तुम्हारी जो कमाई है वो अपनी है, किसी को तंग करके नहीं होनी चाहिए। दुकानदार सौदा बेचते हो, अमीर आया उसको पूरा तोल के दिया, एक मेजा होया भाला आ गया उसको ठगी की कम दिया, ऐसे आदमियों को बरकतें नहीं होती हैं। ये ठीक है कि चार दिन के लिए चार पैसे आ जाते हैं, मगर उसका अंजाम ठीक नहीं होता। जैसा ख्याल वैसा हाल। गृहस्थ में रहने के लिए क्या है, अपने ख्याल को ठीक रखो, यही वेद कहते हैं, शिव संकल्पम अस्तु। अच्छे ख्याल रखो, जहां तक हो सके खुशी का जीवन काटो, अपनी जबान से किसी के दिल न दुखाओ। यही कबीर ने कहा है, जो शख्स पढ़ो कबीर का शब्द, अब मैं भूला रे भाई सतगुरु मेरे जुगत रखाई, अब मैं भूला रे भाई सतगुरु मेरे जुगत लिखाई, निकालो, जानता हूं कि मेरे सत्संग के आप लोग अधिकारी नहीं हैं, पर आप अधिकारी हो या ना हो मुझे क्या, मैंने तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। जो फर्ज मेरे पर लगाया गुरु ने, मैं वो पूरा कर देना चाहता हूं। कोई उससे फायदा उठाए या ना उठाए, मैं उसका ठेकेदार बन के आया हूं।
सतगुर जुगत लिखाई, अब मैं भोला रे भाई, क्रिया कर में चार मैं छाड़ा छाड़ा तीर्थ का नाना, सगरी दुनिया भय से आनी मैं ही एक बराना, अब मैं भोला रे भाई, अब मैं भोला रे भाई, ना मैं जानो सेव बंदगी, ना मैं घंट बजाई, ना मैं मूरत धरे सिंहासन, ना मैं पहुँच चढ़ाई, अब मैं भोला रे भाई, जो ये मूरत मुख से बोले करिए स्नान नहवाई, पांच टका हम देते ठटेरे एक ही हाँ ले आई, अब मैं भोला रे भाई।
अपना धर्म जो निभाता है और उसका जो फर्ज है वो अपनी ड्यूटी पूरी करे, हवन का जो फर्ज है अपनी ड्यूटी पूरी करे, लड़के का जो फर्ज है अपनी ड्यूटी पूरी करे। तो इस वास्ते गृहस्थ आश्रम में रहते हुए क्या है, वेद मार्ग शिव संकल्प मस्त, कल्याणकारी शब्द का ख्याल रखना, तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, फंसना नहीं, ड्यूटी अपनी पूरी करो। तो जो आदमी अपने फर्ज को पूरा नहीं करता, एक आदमी है मंदिर में जाती है, गुरु के पांव भी दबाती है, घर में आगे खत्म से लड़ती है, बच्चों से लड़ती है, तुम मुझे कहो वो परखे, मैं नहीं मानता, बुरा ना मान। ये बात सच्ची। गो जमाना बदल गया, मगर आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि जहां तक हो सके बैठी हो, तुम आती हो, मैं तुम्हें एक ही गुरु बताता हूं, अपने घरों में शांति रखा करो। तीसरी नई चीज जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं, मेरी बात सुन लो, जो मेरे चेहरे में आई। मेरे पास बड़े बड़े नौजवान 27-28 साल के कई आले स्कूल मास्टर बड़े बड़े, कहते बाबा जी अशांत, जो चोर होता है ना डाकू, उसको अगर पुलिस का इंस्पेक्टर बना दिया जाए ना, वो चोरों को खूब पकड़ता है। मैं खुद गंदा इंसान था, 13 वर्ष की उम्र में मेरी शादी हुई, 16 वर्ष की उम्र में ग्रस्त में पता, तो अशांति तो मेरे हिस्से में आनी थी, मुझे पता नहीं था। 1905 में मैंने नाम लिया, 1916 तक सवाए प्रेम के गाने और रोने के मुझे कुछ नहीं अंधे में नजर आया, ना प्रकाश ना सब से रोता ही था या प्रेम से पुकार करता था, बस ये बगराज चला गया, सवाए दो दफा घर में आ, मेरा मानसिक शीख ब्रह्म सही रहा। ये मैं भाषण नौजवान तबका को, लड़कियों को, लड़कों को देना चाहता हूं, अपने दर्द दिल से अपना मुंह काया करके। 12 साल के बाद उस वक्त मेरी फोटो देख लो, अंदर कैसी बनी हुई है। वापस आया, हालांकि मैंने बीने सुनी हुई थी, मार प्रकाश देखे हुए थे, वो बीने सुनी प्रकाश देखे मेरे किस काम आए, मैं तो घर में स्वाद में फंस गया। ये तो सिर्फ बच्चा पैदा करने की नीयत से मैं उसके पास जाता तो मुझे तकलीफ ना होती, मैं तो विषय में फंस गया, वो मेरी शांति चली गई, वो मेरी शांति चली गई। समझ नहीं आती कि मुझे क्या हो गया। तो एक जगह दो आदमी रहा से मेरे पास आए, दाता उन्होंने सवाल किया कि दाता दादा उनका फकीर चंद से पूछ लो, मैं आप शांत था, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं आता, जाओ दाता दादा है तुम जाने, वो चले गए। उन्होंने जो कुछ मैंने कहा दाता को लिख दिया, दादा जा रहे उनको लिखा कि उसको फकीर चंद के पास से कुछ नहीं मिला, उसको मेरे पास से भी कुछ नहीं मिलेगा। अब वो खत लेके मेरे पास सुनाम में आए, मेरे दिल में नफरत आई, मैंने कहा कैसा गुरु इसे, मैं चूंकि भगत हूं, मैं तो समूरा लेके बैठ गया उस माया के दरबार से आगे रोया। अंदर से मेरी आवाज आई फकीर चंद ये ऐब है तेरे में। मैंने 5 साल अपने आप को कंट्रोल किया, फिर भी 2 बच्चे पैदा कर दिए, फिर मैंने कंट्रोल किया। तो अगर तुम लोग शांति चाहते हो तो तुमको मैं बता देता हूं, नौजवानों लड़कियों, अपने मानसिक और शीक ब्रह्मचर्य को वक्त के पहले मत गवाओ। कल मैंने एक किताब पढ़ी है, 40 बूंद खून की 40 दिन में 1 बूंद बीरज की बनती है। कल एक मेरे पास पैम्फलेट आई है, वहां लिखा हुआ है 40 बूंद खून की जो हमारे अंतर होती है, 40 दिन के बाद वो 1 बूंद बीरज की बनती है। अब जो आदमी लड़का या लड़की अगर अपने ब्रह्मचर्य को बिना फायदा अपने स्वाद के लिए जाहिर करते हैं, वो बताओ वो कितने अपने खून को गाया करते हैं। फिर अगर उनके मन में अशांति ना आए तो आए किसको? फिर उनको अगर अशांति ना आए तो आए किसको? अशांति का मेन कारण यही है कि हमारे खून में कमी होती है। जो बच्चा छोटा ज्यादा कमजोर होता है, मां बाप को पूछो हर वक्त रोता रहता है, हर वक्त रोता रहता है। और जो बच्चा तगड़ा है, जो को खुश रहता है, हर वक्त हंसता रहता है। यही बात हमारे स्वास्थ्य से, क्योंकि मेरे घर में ड्यूटी थी, दाता ने कहा था तालीम को बदल देना। दाता मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, آپ نے حکم دیا تعلیم بدل جانا, میں نے جو زندگی میں خود عمل کیا میں نے وہ کہا. مجھے نہیں پتا دوستو میں نے غلط کہتا ہوں یا ٹھیک کہتا ہوں, میرا کوئی دعویٰ نہیں. میں تو کرم کا مارا ہوا ہوں, گرو کا ریڑھ پورا کرنا تھا. میں نے انہوں نے کہا تھا کہ یہ چورا چھوڑنے سے پہلے تعلیم بدل جانا, میں نے جو سمجھا وہ کہا. ہو سکتا میں نے جو کچھ سمجھا وہ سارا غلط ہو, مجھے کوئی افسوس نہیں. مجھے گرو بننے کی حوث نہیں تھی. اگر مجھے گرو بننے کی حوث ہوتی یا کوئی میں بھی پردہ رکھتا, آج لاکھوں کروڑوں روپیہ کا مالک ہوتا, گدیاں ہوتی, ایئر کنڈیشن میرے کمرے ہوتے, میرے نیچے کاریں ہوتی, جتنا مرضی چاہے میں تم لوگوں کو ٹھگ کے روپیہ لے جاتا. بات سچی کہتا ہوں. تو میں کیا کہنا چاہتا ہوں گھر میں اپنے بال بچوں کو اور خود, تم چار چار بچے تمہارے ہو گئے, پانچ پانچ بوڑھے ہو گئے, اب بھی تم کام کو نہیں چھوڑتے تو پھر تمہاری صحتیں بگڑیں گی, پھر تم کو یا تو گرو لوٹیں گے یا ڈاکٹر لوٹیں گے, اور کیا کرے گا. یہ سوچ لو میری بات کو, میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ ہے دنیا کے زندگی کے میں جینے کا راز. شیو سنکلپ رکھو, اپنی صحت کا خیال رکھو, وشال کار کم کرو, اپنی اولاد کو ٹھیک بناؤ. مگر تم بنا کر لے سکتے ہو, جیسے تم ہو ویسی تمہاری اولاد ہوگی. میاں بیوی روز لڑتے رہتے ہیں گھر میں, ان کی لڑکیاں ہوتی ہیں, دیکھتی ہیں وہ, منہ تو نہیں بھولتی, جب خسروں گھر میں جائیں گی وہ بھی خسروں کے ساتھ لڑیں گی, وہ بھی لڑیں گی. تو اگر تم اولاد کو سنبھالنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو. بس اگر تم ٹھیک ہو تو پھر تمہاری اولاد بھی ٹھیک ہو جائے گی. میں نے ایک لڑکا اس خواہ سے پیدا کیا اور مجھے آج دن تک کوئی تکلیف نہیں ہوئی. باقی اولاد میں نے بھی ویسی پیدا کی جیسے تم نے پیدا کی, جیسے تم نے غلطیاں کھائیں ویسے میں نے بھی غلطیاں کھائیں, مگر میرا شکر مالک کا وہ مر گئی. اچھا ہوا وہ مر گئی, یہ تو دنیا میں خبر مکایا کرتی. میرا کیا کام ہے, کیا ٹائم ہو گیا؟ آپ بھی شروع کیا تھا تو میں نے آپ کو کوئی کسر باقی چھوڑی نہیں, سب کچھ. اور رس میں رہنے کے لیے میں نے آپ کو کبیر کا سبق سنا دیا, اگلی کڑی ہوگی سنا دو.
شبد باد کو تیاگے چھاڑے گرو گمانا, سات نام تاہی کو ملی ہے کہے کبیر سجانا. اب میں بھولا رے بھائی, اب میں بھولا رے بھائی.
اب دیکھو کبیر کیا کہتا ہے, سات نام اس کو ملے گا جو شبد کو سہے گا, کسی کی بات کی سخت بات کو برداشت کرنے والا جو ہوگا وہ سہے گا. اگر وہ نہیں سہتا, غصہ کرتا ہے, نعرے بڑھتا ہے یا ٹھوکتا ہے, وہ سچ نام کو نہیں پڑھا سکتا. شک بابے بشیر کو 10,000 روپیہ دے دو. یہ عملی زندگی ہے. میں تم لوگ کپور سنگھ, تم لوگ جو بڑے میجر بخشی سنگھ, یا تم لوگ جتنے میرے پاس آتے ہو پرمارت کے خیال سے, لال سنگھ وغیرہ, میں اپنی ڈیوٹی پوری کر دینا چاہتا ہوں تاکہ میری آتما پر گرو بننے کا کوئی پاپ نہ لگے. اب میں نے بہت کچھ آپ کو کہہ دیا, اب آرتی کر دیا.
شرن شرن کی بندنا نت کوئی اور نہ کام, گرو بس چیت آئے میرے بخش دو نج نام. تیری شرن جب کس کی راکھوں آس تو تیری دیا کی جگ سے رہا. पारने जयकारे।